आज विशेष रूप से पिता को स्मरण किया जा रहा है। पितृ दिवस कहते हैं इसको, फादर्स डे जो आप आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पितृत्व का क्या अभिप्राय है, कौन पिता होता है और उस पिता का क्या महत्व है, पिता का इंपॉर्टेंस क्या है, पूरे संसार में तीन ऐसे तत्व हैं जिनको पूजा जाता है। एक है मां माता, दूसरा स्थान है पिता का और तीसरा स्थान है आचार्य और गुरु का। शास्त्रों में वैदिक वांग्मय में सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में एक वाक्य प्रवक्ता लोगों के द्वारा, प्रवचनकर्ताओं के द्वारा बोला जाता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। तीन तत्व मिलकर के तीन लोगों के द्वारा पुरुष का निर्माण होता है, यानी मनुष्य का निर्माण होता है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो निर्माता होता है, जो क्रिएटर होता है, उसकी सबसे अधिक पूजा होती है। जो बनाने वाला होता है, जो क्रिएटर होता है, दो चीजों को, दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को हम बनाते हैं। एक होता है मेटेरियलिस्टिक, भौतिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, और जो भौतिक पदार्थों का निर्माण करने वाले हैं उनको भी पूछते हैं, उनका भी दुनिया में नाम होता है, उनको आदर की भावना से देखा जाता है, उनको आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। चाहे वो आपके हाथों में मोबाइल को बनाने वाले हों या कोई भी भौतिक पदार्थों को जिन्होंने बनाया, जिनका निर्माण किया है, क्या दिमाग लगा होगा उनका, क्या बुद्धि लगी होगी, कितना मेहनत पुरुषार्थ उन्होंने किया होगा, जिन्होंने जिन वस्तुओं को, जिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाया। और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जो इन्वेंट करते हैं, कितना मेहनत करते होंगे, जिनके फल स्वरूप हम लोग जिन चीजों का प्रयोग करके बहुत सुखी होते हैं। तो एक भौतिक वस्तु का निर्माण है, मेटेरियलिस्टिक चीज का हम निर्माण करते हैं, और एक अभौतिक नॉन मेटेरियलिस्टिक जो इस मनुष्य शरीर में रहता है, आत्मा। शरीर के माध्यम से आत्मा का निर्माण, ये भी एक निर्माण है, ये भी एक क्रिएशन है, इसको हम कह सकते हैं लिविंग थिंग का निर्माण। एक नॉन लिविंग थिंग का निर्माण होता है, एक लिविंग थिंग का निर्माण होता है। दो वस्तुओं का निर्माण दुनिया में किया जाता है, और विशेषकर जो लिविंग थिंग है, जो मनुष्य है, उसका जो निर्माण करने वाले ये तीन तत्व है, तीन पदार्थ हैं, जिनको बड़े आदर से हम नाम लेते हैं। पिछले महीने में मातृ दिवस बनाया था, मदर्स डे बनाया था, बनाया था ना आपने, और इस महीने में आप फादर्स डे बना रहे हैं, पितृ दिवस। ऋषियों का वचन कह रहा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। कोई पुरुष पुरुष के रूप में जब निर्मित होता है, बनता है, उसके पीछे ये तीन लोग होते हैं, माता पिता और गुरु आचार्य। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत विशेष बात कही है इसी निर्माण की प्रक्रिया में। वो कहते हैं गर्भ से लेकर के 3 वर्ष या 5 वर्ष तक, जैसे गर्भ स्थापित होता है वहां से लेकर के 9 महीने गर्भ के अंदर, उसके बाद तो गर्भ से लेकर के 4 या 5 वर्ष तक जो मां निर्माण कर सकती है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकते। ये बात महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, यानी बच्चे के 5 साल तक जो मां उस बच्चे को संस्कृत करती है, सुसंस्कृत करती है, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके सेंसेस में, उसके शरीर में, यानी फिजिकली देखो, इमोशनली देखो, मेंटली देखो और स्पिरिचुअली देखो, जो वो मां उसको बेस दे सकती है दुनिया में और कोई नहीं दे सकते, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। पर उसके बाद में जो क्रम आता है दूसरे स्थान पर पिता का, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं उसके बाद में उसको सींचने का काम, उसको मॉडिफाई करने का काम, उसको ग्रोथ करने का काम 3 साल देना है, कम से कम केवल पिता को 3 साल देने का काम दिया है। 3 साल तक, 5 से लेकर 8 साल तक जो निर्माण पिता उस बच्चे का कर सकता है वो और कोई दुनिया में नहीं कर सकता, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। क्या निर्माण करते हैं, क्या ऐसा देते हैं उस बच्चे को जिससे उसका निर्माण होता है? देखिए, हम उस परंपरा को मानते हैं जो वेदों की परंपरा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंपरा रही है चारों वेदों को पढ़ने की, तो वो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद इट मींस नॉलेज, उस पूरे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, उन मंत्रों का कितना ज्ञान विज्ञान है, कितना नॉलेज है, उसका एसेंस के रूप में, समराइज के रूप में, एक समरी के रूप में वो जो उस बच्चे को दिया जाता है पिता के माध्यम से, बहुत स्पेशल होता है, बहुत विशेष होता है, को जो 3 साल के अंदर उस बच्चे को जो दिया जाएगा पिता के माध्यम से, पिता कहते हैं पालक को, रक्षक को। पिता के लिए मां रोती है, आंसू निकालती है, क्या समझते हैं आप, पिता नहीं रोता है? पिता आंसू नहीं निकालता है, ये ठीक है, कोई कोई निकालता होगा, लेकिन हर कोई पिता आंसू नहीं निकालता, लेकिन अंदर ही रोता है वो दिखाता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, कुछ इमोशंस को वो प्रकट नहीं करता, पब्लिश नहीं करता, वो सबके सामने प्रकट नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं है कि इमोशंस केवल मां के अंदर ही होती हैं, सबके अंदर होती हैं। कुछ अपने इमोशंस को वो प्रकट करती है मां, लेकिन पिता कभी करता है लेकिन कभी नहीं करता, लेकिन उसके अंदर उस बच्चे के निर्माण के लिए वही भाव होते हैं जो एक मां के अंदर होते हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिता का अपना स्थान है, मां का अपना स्थान है, सबका अपना अपना स्थान है, सभी मिलकर के निर्माण करते हैं, किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मां को हटाओ तो पिता कुछ नहीं कर सकते, गुरु कुछ नहीं कर सकते, आचार्य कुछ नहीं कर सकते, पिता को निकालो तो मां कुछ नहीं कर सकती, आचार्य कुछ नहीं कर सकता, और माता और पिता को हटा दो तो गुरु आचार्य भी कुछ नहीं कर सकते। तीनों की आवश्यकता है, तीनों ही मिलकर के निर्माण करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं होंगे फिर, जहां इनका निर्माण होता है। वो सब आचार्य गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो प्रोफेसर से जो भी हैं, वो भी निर्माण करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करते हों। तो पिता का अपना एक बहुत महत्व है जीवन में, बहुत तप करता है, रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए बहुत तप करता है। तो इसलिए निर्माण करने वालों की पूजा होती है, तो इसलिए पिता की भी पूजा होती है, पिता का भी अपना महत्व है। और सबसे बड़ा पिता तो परमपिता परमेश्वर है, पिता उनको भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी निर्माण करता है, वो सृष्टि का निर्माण करता है, हमारे शरीरों का निर्माण करता है, इसलिए वो भी पिता है। इस माता पिता के थ्रू वो निर्माण करता है इस मनुष्य शरीर का, इसलिए पिता का अपने आप में एक बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंट्स है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। इसलिए कभी सम्मान देने की बात आती है, कभी उनकी पूजा करने की बात आती है, उनको सत्कार करने की बात आती है, बहुत सारे लोग बैठे हों जो अलग अलग फील्ड के हों, सब एक से बढ़कर एक बड़े लोग हों, उन सब के बीच में माता पिता भी हों, तो सबसे पहले किसका सम्मान करना चाहिए? तो शास्त्रों में यही कहा है, मां का सम्मान करो, फिर उसके बाद पिता का सम्मान करो, बाकी तीसरे स्थान में बाकी सब आ जाएंगे। इसलिए मोटी भाषा में मैं कई बार बोलता हूं लोगों को हंसाने के लिए, देखो जी हम लोग थर्ड क्लास के लोग हैं, कुछ समझ में आ रहा है जी? हम तो थर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे वो लाल पीले कपड़े कोई भी आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, सब थर्ड क्लास के हैं। हैं, ये क्या मतलब है? थर्ड क्लास का मतलब है तीसरे स्थान पर आते हैं, हां इसका ये मतलब होता है, कभी और अर्थ नहीं लेने का। थर्ड क्लास का मतलब तीसरे स्थान पे, पहला स्थान है मां का, उसके बाद पिता का स्थान है। पहले अगर सम्मान करना हो किसी का, बड़े से बड़े लोग बैठे हो, तो सबसे पहले मां को प्रणाम करो, उसके बाद पिता को करो, उसके बाद तीसरे स्थान में बाकी जो कोई भी हो, ABCD कोई भी हो। इसलिए पिता का बहुत महत्व है हमारे लाइफ के अंदर। इसलिए वचन कहता है, ऋषि लोग कहते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, क्रम भी ऐसे ही रखा उन्होंने, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदा। वेद ये भी कहता है मनुर्भवा, मनुष्य बनो, मनुष्य तो हैं हम लोग, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन वेद कहता है मनुर्भवा, मनुष्य बनो, इसका मतलब मनुष्यपना अभी लाना है हमें, मनुष्यता, मनुष्यपना, मानवीयता जिसको हम कहते हैं, ये हमारे में आने हैं। इसलिए वेद ये भी कहता है पशु रजायता, जब बच्चे का जन्म होता है तो मां के गर्भ से बच्चा जब निकलता है तो उसके लिए वेद कहता है पशु रजायता। अब ये मनुष्य नहीं है, पशुवत है, ये पशु के समान है, उस पशु समान मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम यदि दुनिया में कोई करते हैं तो बेसिक ये तीन लोग हैं जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से मनुष्य बनता है, जो मां बनाती है, मां निर्माण करती है, माता निर्माता भवती, ऐसा कभी सुना होगा आपने, पिता निर्माता भवति, कभी सुना हो आप? आचार्य निर्माता भवति, आचार्य जो है निर्माण करने वाला है, ये सब निर्माण करने वाले बनाने वाले हैं। ऐसे ही मनुष्य नहीं बनता है, कितना मेहनत करना पड़ता है मनुष्य बनाने के लिए, कितने सालों देना पड़ता है। बच्चा पैदा होने से लेकर के जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं होता है, जैसे आजकल आप लोग जो मास्टर्स करते हैं, जो बच्चे लोग करते हैं, मास्टर्स करने के बाद फिर उसकी शादी करते हैं, फिर वो अब जीता है अपना लाइफ, तो तब तक जो मां करती है, पिता करता है, या बाहर के जो स्कूल कॉलेजों में जो वो लोग निर्माण करते हैं, ये सब निर्माता है, निर्माण करने वाले हैं। तो हम जो याद करें, स्पेशल जो हम याद करें पिता को, सबके पिता हैं, हम जो भी याद करते हैं पिता को, चाहे वो हमारे सामने हो या हमारे पीछे हो, उनके अंदर जो उत्तम क्वालिटीज हैं, जिनके माध्यम से हम अपने लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो जीवन का अनुभव है, उसको अपना करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जीवन में कमियां बहुत होती हैं हमारे, ठीक है, हो सकता है आप अपने आप को, मैं अपने आप को बहुत बड़ा माने, लेकिन पिता के सामने बड़े नहीं हो सकते। हां, अगर बड़ा बनना हो तो वेद कहता है सपितुः पिता सत, यानी ईश्वर बहुत उदार है, वो कहता है मैं तो पिता हूं आपका, लेकिन तू मेरा पिता बन जा। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए, ईश्वर स्वयं कहता है वेद में, यजुर्वेद का मंत्र है, उसके अंत में आता है सपितुः पिता सत, वो पिता का भी पिता है, यानी आपको कहा जा रहा है, वो आप यानी पिता को कहा जा रहा है, एक पिता है जो आप हैं, जो भी आप में से पिता है, आप पिताओं को कहा जा रहा है यहां पर, पितुः पिता सत, तू पिता का भी पिता बन जा, यानी ईश्वर का भी पिता बन जाए। जैसे हम मोटी भाषा में कहते हैं ना, ये मेरा बेटा नहीं, ये तो मेरा बाप है, कोई पुत्र कोई बेटा इतना बड़ा काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, सब लोग उसकी वाहवा कर रहे हैं, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीमली उसने आगे अपने लाइफ को बढ़ाया है, बहुत ग्रोथ कर लिया किसी भी फील्ड में वो, तो वो जो पिता जो अपने बेटे को कहता है, ये तो बेटा नहीं, ये तो मेरा बाप है, ऐसा नहीं बोलते। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर स्वयं कहता है हम सबको, जो भी पिता बनाए आज, उन सबके लिए कहा जा रहा है सपितुः पिता सत, वो पिता का भी पिता बने। जो हमारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे जो अपने कर्तव्य हैं, जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन करता है, देखिए ये जो पूर्णता है, ये सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में बोला जाता है, महर्षि स्वामी दयानंद अपने ग्रंथों में जगह जगह पर पूर्ण की बात करते हैं। अगर स्कॉलर बनना, विद्वान बनना है, तो पूर्ण विद्वान बनो, संयम रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करना है तो पूर्ण तप करो। वो हर शब्द के साथ में एक क्वालिटी, एक विशेषता जोड़ दिए, पूर्णत्व, पूर्णता, हमें पूर्ण बनना है उस फील्ड में, उस क्षेत्र में हमें परिपूर्णता लानी है। तो पिता के लिए कहा जा रहा है आप पिता का भी पिता बन सकते हो, यानी ऐसा काम करो जिससे आप मुझ पिता का भी आप पिता बन जाओगे। तो क्या काम है ऐसा करने, कोई काम नहीं है, जो आपके हमारे सबके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको पूरा करना है और कुछ नहीं। यानी जो कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को पूरा करना है, अधूरा नहीं है, और कुछ कर्तव्यों को करना, कुछ नहीं करने की बात नहीं है, जितने भी कर्तव्य हो सकते हैं हमारे, वो सारे के सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत क्षमता होती है, बहुत सामर्थ्य होता है। देखिए पिता लोग अलग अलग होते हैं, राजा को भी पिता कहते हैं, ऐसे पिता बहुत सारे लोगों को कहते हैं। जो ये जो समाज आपका चल रहा है, इस समाज के भी कोई पिता है। देखो महाजन जी बैठे यहां पर, ये भी पिता है, नहीं है क्या? किसी भी समाज का जो नेता होता है, जो समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है, वो भी पिता है। पिता का मतलब पालक है, रक्षक है, वेदों की रक्षा हो रही है, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। जो भी रक्षा कर रहा है, जो त्याग करता है, जो समय का त्याग करता है, जो पैसे का त्याग करता है, जो नॉलेज का त्याग करता है, बहुत त्याग है हमारे जीवन में। हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग त्याग देता है। कोई समय का त्याग करता है, कोई पैसा का त्याग करता है, कोई ज्ञान देकर के त्याग करता है। अलग अलग ढंग से हम त्याग कर सकते हैं। तो व्यक्ति के अंदर क्षमताएं बहुत होती हैं, सामर्थ्य बहुत होता है। वो उसका त्याग जब करता है तब वो पिता बन जाता है, वो रक्षक बन जाता है, वो पालक बन जाता है। तो महाजन जी भी और उनके पिता भी, जो इसके संस्थापक है इस समाज के, अगर ऐसे लोग समाजों की स्थापना नहीं करते जहां कहीं भी, तो हम लोग उस समाज में बैठ करके ये काम ये सुन नहीं सकते या हवन नहीं कर सकते या यहां योगा के क्लास नहीं चल सकते या अलग अलग एक्टिविटीज जो होते हैं वो सब नहीं हो सकते। एक स्थान चाहिए, एक समाज चाहिए। ऐसे समाजों के जो निर्माण करने वाले होते हैं वो भी पिता होते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है पितृत्व जो है बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पितृत्व होना है, मातृत्व का होना है, आचार्यत्व का होना है, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। ये सब समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, मनुष्य मात्र को आगे ले जाने वाले होते हैं, अग्रज होते हैं, नेता होते हैं, अग्नि के रूप में काम करते हैं। ऋग्वेद में 10 पाठ हैं, 10 मंडल के नाम से बोला जाता है, और पहला ही मंडल और उस मंडल के अंदर छोटे छोटे विभाग हैं, और उन विभागों में जो पहला विभाग है और पहले विभाग का जो पहला मंत्र है जो आप सब जानते होंगे, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातम, उसमें अग्नि शब्द सबसे पहले है। ये जो अग्नि है, अग्नि का अर्थ बहुत सारे हैं। एक अर्थ बहुत व्यापक रूप से बोला जाता है अग्नि अग्रणीर भवति। अग्नि का मतलब है जो आगे ले चलता है, आगे ले जाता है व्यक्ति को, मनुष्य को, प्राणी को आगे बढ़ाता है। तो जो मां होती है, पिता होता है, गुरु आचार्य होता है, पुरोहित होता है, ये सब अग्रणी होते हैं, आगे ले जाने वाले होते हैं, ये पालक होते हैं, ये रक्षक होते हैं। कोई आगे होना चाहिए, हर व्यक्ति के सामने कोई ना कोई आगे होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए मां की आवश्यकता होती है, पिता की आवश्यकता होती है, नीड है इनकी, गुरु की आवश्यकता होती है, पुरोहित की आवश्यकता होती है। ये हमारे हित को आगे रखते हैं हमेशा, मां भी, पिता भी, गुरु भी और पुरोहित भी। और पुरोहित का नाम भी ऐसा ही रखा है, पुरः सामने, हितः हित को रखने वाला है, हमारे हित को, हमारे कल्याण को हमेशा सामने रखने वाला होता है, उसी को पुरोहित कहते हैं। ऐसे ही मां करती है, ऐसे ही पिता करता है, ऐसे ही समाज को बनाने वाले भी करते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिन बातों की ओर संकेत किया है उन बातों पर हमें ध्यान देना है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, वो पुरुष है जिसकी मां ऐसी हो, वो पुरुष है जिसका पिता ऐसे हो, और वो पुरुष है जिसका गुरु आचार्य ऐसे हो। कैसे? निर्माण करने वाले, संस्कृत करने वाले, संस्कारों को देने वाले। देखिएगा, निर्माण जो है, मनुष्य का निर्माण, एक तो फिजिकली शारीरिक निर्माण, इमोशनली भावनाओं का निर्माण, मेंटली मन का निर्माण, और स्पिरिचुअली आत्मिक निर्माण। इन चारों निर्माण करने वाले ये लोग होते हैं और उनका अपना अपना महत्व है। केवल पढ़ा देने से, केवल पैसे देने से निर्माण नहीं होता है, उसके माध्यम से उसको देखना। आज आप बहुत समय देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक पिता कितना समय देता होगा, कितना कुछ करता होगा, इस बात को सभी लोग जानते हैं। हम विशेष रूप से आज पिता को याद कर रहे हैं, वैसे तो रोज याद करना है हमको, रोज सामने रहना है, लेकिन विशेष रूप से इसलिए याद करते हम जिससे कि आज के दिन पूरा हमारा दिमाग उससे रंग जाना चाहिए। और हम जब से होश में आए तब से लेकर अब तक जो हम अपने पिता को देख पाए और जो देख नहीं पाए उनको देखने का प्रयत्न करें, और उनके अंदर जो भी अच्छाइयां हैं, जो आपको लगता है इनके अंदर ये क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है, और जो इनके पास एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो मुझ में नहीं है, वो उनसे हमें गेन करना, उनसे प्राप्त करना है, उनसे लेना है, और संकल्प भी लेना है, प्रतिज्ञा भी करनी है, व्रत भी लेना है। केवल विश करना नहीं है, शब्दों से वर्बली हमको नहीं करना है, प्रैक्टिकली भी हमें कुछ करना है उनके लिए और अपने लिए, प्रेरणा लेनी है, क्रियात्मक रूप से हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, क्रियात्मक रूप से उनसे कुछ लेना है, और क्रियात्मक रूप से उनके लिए कुछ करना है, तब वास्तव में हमारा विश करना बनता है। केवल दो शब्द बोलकर के इतिश्री नहीं करना है हमको, वो तो बहुत इजी है। जैसे कोई भगवान के लिए, जैसे ही कहीं भगवान का स्थान आता है और वो सिर यूं झटकाता है नीचे, ऐसे करता है, या अधिक से अधिक हाथ जोड़ता है और थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता है, या उससे भी ज्यादा तिलक लगाता है, माला डालता है, और 5 मिनट बैठता है फिर चला जाता है, उसके बाद फिर समाप्त। ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए वो एक्सटर्नली तो हो रहा है, उसके लिए मेरे को कुछ नहीं कहना। इंटरनली जो ग्रोथ करना चाहिए हमको, अंदर से आंतरिक जो उन्नति है हमारी, उसके लिए ये बहुत महत्व रखता है, पिता को स्वीकार करना, पिता को सामने रखना। जब आदमी गोल बनाता है, अपना लक्ष्य बनाता है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी रीजंस होते हैं, जितने भी साधन होते हैं उसके लिए, जितने भी उपाय होते हैं, जितने कारण होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, वहां एक रीजन पिता को भी बना है। आज जो कुछ भी हो पिता के कारण से, जो कुछ भी हो मां के कारण से, जो कुछ भी गुरु आचार्य के कारण से। तो ये अगर ना भूल करके अपने गोल को अचीव करने के लिए सतत हम पिता को साथ जोड़ें और उनका एक्सपीरियंस लें, उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़े और उनसे भी अधिक काम करें, तो उनके लिए और खुशी होगी और प्रसन्नता होगी। तब वो भी कह सकता है ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बाप है। तो ऐसे पिता को कोई इतना गौरवान्वित करे तब ये हमारा पितृ दिवस फादर्स डे बनाने का उचित माना जाएगा, अथवा ये कहूं कि सार्थक माना जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सुख के जो पल होते हैं, सुखी होने का जो होता है, यूं तो हमें हमेशा ही कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे दिनों में, ऐसे ऐसे अवसरों में हम बहुत अधिक खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, कुछ संकल्प लेकर के, कुछ प्रतिज्ञा लेकर के कुछ आगे और बढ़ सकते हैं और उन्नत हो सकते हैं अपने जीवन में। तो उन्नति करने के लिए कोई ना कोई हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए ये जितने भी हम लोग बनाते हैं, चाहे बर्थडे बनाते हैं, चाहे आप मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं, चाहे आप फादर्स डे बनाते हैं, मदर्स डे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, इन दिनों में कुछ ऐसा विशेष हमको करना चाहिए ताकि हमें हमेशा वो सामने रहे। और ऐसे ऐसे अवसर जो है हमको बैटरी चार्ज करने वाले होते हैं। जैसे मोबाइल में हम बैटरी लो हो गए तो अब क्या करते हैं, हम लोग चार्ज करते हैं ना, तो ऐसे ही अपने आप को चार्ज करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर अपने आप को कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे वो यादगार रहे, जिनको स्मरण रखे, जिनके जीवन को अपने सामने रखें। तो निश्चित बात है ऐसा करने से हमारी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति होगी और हमारी उन्नति से, सबकी उन्नति से हमारे जो भी पिता हैं वो बहुत प्रसन्न रहेंगे, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होगी और उनके दुख में हमारा दुख होगा। सुख में और दुख में हम मिलके रहेंगे। फिर हम जो बोलते हैं ना, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानता, ये वैसे नहीं है, ये उस रूप में मिलकर के सुख में भी हम मिलके रहे, दुख में भी मिलके रहे, हर परिस्थिति में मिलकर के रहे, विचारों से भी मिलके रहे, भावनाओं से भी मिलके रहे, शरीर से भी मिलके रहे, मन से भी मिलके रहे, बुद्धि से भी मिलके रहे, आत्मा से भी मिलके रहे, तब जाकर के जो हम मंत्र बोलते नहीं है, आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, आत्मबल, देखिए ईश्वर से आत्मबल मिलता है, मां से आत्मबल मिलता है, पिता से भी आत्मबल मिलता है। आत्मा का बल प्राप्त करना है पिता से, मानसिक बल भी प्राप्त करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति ऐसा परेशान होता है, ऐसा दुखी होता है, तो जो पिता होता है उनके पास में जो एक्सपीरियंस होता है वो चुटकी भर में हमारे जो मुसीबत है, हमारी जो समस्या है, उसका वो समाधान कर लेता है। उसके अनुभव से हमको बहुत कम समय में, संकेत मात्र से हमको बहुत कुछ लाभ मिलता है। हम उन छोटे छोटे पलों को याद करके देखें पिता के, तो हमको बहुत खुशी मिलेगी और हम उनको बहुत अधिक खुश कर सकेंगे। इसलिए मैं यही आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज का जो दिन है अपने पिता को स्मरण करने का और उनके लिए विश करने का, उनको धन्यवाद देने का, उनको आभार देने का और अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने का। कृतज्ञता शब्द से परिचित आप हो, दो शब्द होते हैं, एक है कृतज्ञ और एक है कृतज्ञ। कृतम का अर्थ होता है किया हुआ और घ्ना का अर्थ होता है न मानना। उसको मार देना, किए हुए उपकार को जो व्यक्ति मार देता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो पिता हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कर भी रहा है और कार्य करेगा भी, उस किए हुए उपकार को, पिता के द्वारा किए हुए उपकार को नहीं मानेंगे तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे। और कृतज्ञ का मतलब यह होता है किए हुए उपकार को स्वीकार करना। कृतम का मतलब किया हुआ उपकार, जो भी किया उन्होंने हम पर उसको जिया, जिया का मतलब है मानना, स्वीकार करना। तो किए हुए उपकार को जो स्वीकार करता है वो कृतज्ञ कहलाता है। तो पिता ने हम पर जो भी उपकार किया है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है। उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े करना है, शरीर से करना पड़े, इंद्रियों से, मन से करना पड़े, आत्मा से करना पड़े, जैसे भी करना पड़े हमें करना है, क्योंकि हमारे कर्म तीनों होते हैं, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। तो तीनों प्रकार से उनके लिए हमें कुछ करके उनके नाम को रोशन करना है, उनको बहुत आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब पिताओं को शुभकामनाएं देते हुए और अच्छे शब्दों के माध्यम से मैं आप सबको ईश्वर की ओर से और ऋषियों की ओर से कुछ वचन मैं आपके सामने रखता हूं, जो भी पिता लोग हैं उनके लिए और हमारे महाजन जी के लिए, जो भी उन्होंने हम सबके लिए इस समाज के माध्यम से किया है उसके लिए भी कुछ वचन मैं बोलता हूं। आप सब लोग बोलें, ओम सत्याह संतु यजमानानाम कामाह, ओम पूर्णाह संतु यजमानानाम कामाह, ओम सफलाह संतु यजमानानाम कामाह। हे ईश्वर, हमारे पिता रूपी यजमान सुखी स्वस्थ निरोगी प्रसन्न शांत निर्भीक आस्तिक बनकर स्वयं को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को सुखमय बनावें। ओम स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति ही। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सभी पिता लोगों को।